नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पास धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पास धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पास धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है आवाज जो के तेरा पीछा कर रही है, कोई है आवाज जो के तेरा पीछा कर रही है, है तेरा मसीहा जिससे तेरी रूह डर रही है, तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा, सारा सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा तेरे पास भूल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा तेरे पास भूल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा
प्रिय मित्र प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से नीति वचन नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले दिनों में हमने परमेश्वर के दासों के द्वारा लिखे इस नीति वचन से हमने काफी आशीषों को प्राप्त किया है और मैं आशा करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आप अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे सामर्थ्य और जीवित पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन फिर से दूर में भी रहकर एक साथ रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, ताकि आज जो कुछ भी हम सुनते हैं निश्चित रूप से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, दुनियावी चिंताओं से, शैतान के हर एक छल प्रपंच से आप हर एक की रक्षा करें। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए भी है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, चिंतित हैं और किसी प्रकार के बोझ और कर्ज से दबे हुए हैं। आप उनकी भी सुधि लें, उन्हें भी छुटकारा दें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए आप मेरे साथ नीति वचन की पुस्तक 25 अध्याय उसके 26 पद को निकाल लीजिए। नीति वचन 25 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वह गंदले सोते और बिगड़ते हुए कुंड के समान है। जब मैं छोटा था तब हम अपने गर्मी छुट्टियों में दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाया करते थे। तब हम अपने साथ कभी कभी पानी लेना भूल जाते थे। एक बार की स्थिति ऐसी है कि हम सब दोस्त प्यास से बिल्कुल परेशान और व्याकुल थे। हम में से किसी के पास पानी नहीं था और तब हम नाले के किनारे पानी ढूंढते हुए एक स्थान पर पहुंचे जहां पर थोड़ा सा पानी हमें मिला, लेकिन उसमें कीड़े थे, पत्ते सड़े हुए थे। और तब हमने उस पानी को साफ किया और प्रत्येक ने बारी बारी से उस पानी को पिया। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कैसी निराशा की बात होती है। यहाँ एक सत्यवादी धर्मी जन की तुलना दुष्ट से कर रहा है कि धर्मी जन को दुष्ट के आगे झुकना पड़ता है, व्यापार में, राजनीति में। पद पाने के लिए सत्यनिष्ठ मनुष्य को दुष्ट के आगे झुकना पड़ता है। कलीसिया में भी ऐसा ही होता है। उचित शिक्षा और सच्चाई के लिए खड़े होने को समझौता करना पड़ता है। यह दुख की बात है। जी हाँ, पानी खोजते हुए जलाशय के पास पहुंचकर देखना कि पानी गंदा है, अति उत्तम पद है। नीति वचन 25 के 27 पद में लिखा है, बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछ पाछ महिमा का कारण होता है। थोड़ा सा शहद तो अच्छा होता है, परंतु बहुत अधिक शहद खाने से आप परेशान हो जाते हैं। मनुष्य आत्म सम्मान का भूखा हो, विशेष करके मसीही सेवा में तो वह आपको परेशान कर देता है। हम कलीसिया में देखते हैं कि मसीही जनों में अनावश्यक महत्वाकांक्षाएं हैं। यह देखकर आप बहुत परेशान हो जाते हैं। नीति वचन 25 के 28 पद में लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसके शहर पनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। जी हाँ, यह नीति वचन उन मनुष्यों के बारे में है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रख सकते, जो संयमी नहीं हैं। आप जानते हैं कि संयम आत्मा का फल है। ऐसा समय आता है जब मनुष्य भावना से अभिभूत होकर संयम खो देता है, परंतु हमें अपनी भावना पर नियंत्रण रखना है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 25 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 26 में देखेंगे। इस अध्याय का पहला भाग मूर्ख के विषय चर्चा करता है। बाइबल में, विशेष करके नीति वचन में, मूर्ख के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यह मंद बुद्धियों के बारे में नहीं है, न ही परमेश्वर भोलों और मानसिक रूप से अविकसित मनुष्यों के बारे में नहीं कह रहा है। यहाँ वचन मूर्ख उसे कह रहा है जो कुशाग्र बुद्धि है, जिसने PhD की उपाधि ली है। मित्रों, आप गलत न समझें। भजन संहिता 14 उसके 1 में लिखा है, जहाँ दाऊद कहता है कि मूर्ख ने मन में कहा कि परमेश्वर नहीं है। मूर्ख वह है जो सोचता है कि वह अति बुद्धिमान है, वह नास्तिक है। इब्रानी भाषा में मूर्ख का अर्थ है जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अतः जो यह कहे कि परमेश्वर नहीं है वह पागल है। परिवार के सदस्यों में आपस में विवाद करने से कभी कभी तो बहुत ही बुद्धिमान संतान उत्पन्न होती है, परंतु मानसिक दुर्बलता भी उत्पन्न होती है। अपनी सेवा के मेरे युवा समय में एक पास्टर ने ऐसे ही परिवार में विवाह किया। उसकी 2 अति प्रतिभाशाली पुत्रियां थी। मैं उस स्थान में सभा लेने के लिए गया तो उन्होंने मुझे घर बुलवाया। जो पास्टर मुझे वहां ले गया था उसने मुझे पहले ही सावधान कर दिया था कि मुझे वहां अनेक विचित्र बातें देखने को मिलेंगी। वे दोनों बहनें अब वृद्ध हो गई थी। मैंने अपने जीवन में ऐसी कुशाग्र बुद्धि महिलाएं नहीं देखी थी। वे सब कुछ को जानती थी, मेरे बारे में, मेरे कलीसिया और मेरे सेवकाई के बारे में, बाइबल, साहित्य, संगीत और वर्तमान घटनाएं, सब का उन्हें ज्ञान था। वहां पहुंचकर हमें बैठने के लिए कुर्सियों पर से मुर्गियां भगानी पड़ी। मैं उनसे बात कर ही रहा था कि रसोई के द्वार से गाय ने अपना सिर निकाला। उनके शयन कक्ष में घोड़ा था और मेरे विचार में चारों ओर बकरियां थी। इन बहनों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। परमेश्वर जब किसी को मूर्ख कहता है तो उसका अभिप्राय ऐसे मनुष्यों से नहीं है। उसके कहने का अर्थ है कि जिसने उसका त्याग किया है। परमेश्वर ऐसे मनुष्य को पागल कहता है। नीति वचन 26 उसके 1 पद में लिखा है, जैसा धूप काल में हिम का और कटने के समय जल का पड़ना, वैसा ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। मूर्ख की एक पहचान है कि वह अपना सम्मान खोने की चिंता नहीं करता है, और सच तो यह है कि ऐसे मनुष्य का सम्मान होता ही नहीं है। नीति वचन 26 उसके 2 पद में आगे लिखा है, जैसे गौराया घूमते घूमते और सूप बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। भावी घटनाओं का अनुमान लगाने से उनका पूरा हो जाना हमेशा आवश्यक नहीं है। प्रसंगवश आज हमारे मध्य अनेक भविष्यद्वक्ता हैं। उनकी कुछ भविष्यवाणियां सच भी होती हैं, परंतु परमेश्वर की ओर से उन्हें यह वचन प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कभी कभी वे गलत भी होते हैं। परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता कभी गलत नहीं होता है। आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक 18 अध्याय उसके 20 से 22 पद को पढ़ सकते हैं। नीति वचन 26 उसके 3 में लिखा है, घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए लगाम और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। यह एक अति उत्तम वचन है। घोड़े और गधे को प्रशिक्षण दिया जा सकता है, परंतु मूर्ख केवल एक ही बात पर प्रतिक्रिया दिखाएगा, डंडा खाने पर। नीति वचन 26 उसके 4 और 5 पद में लिखा है, मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। जब मैं छोटा था तब हमारे नगर नास्तिक को बाइबल की विषमताएं उभारने में बड़ा आनंद आता था। वह इस पद का भी संदर्भ देता था, परंतु मेरे मित्रों यहाँ तो कोई भी विषमता नहीं है। ये दो नीति वचन हमारे सामने मूर्ख की प्रतिक्रियाओं को ही व्यक्त करते हैं। मैं जो पत्र पात्र करता हूँ या पत्रचार करता हूँ उनमें से कुछ के उत्तर देता हूँ और कुछ के नहीं, क्योंकि मेरे विचार में वे पत्र मूर्खों के हैं और उनका उत्तर देकर मैं स्वयं ही मूर्ख बनूंगा। यदि आप मूर्ख की मूर्खता में आ जाएं, तो आप भी मूर्ख ही होते हैं। जैसे आपने कहावत सुना है कि गधे को लात मारना अपने आप को गधा बनाना है। मुझे हाल ही में एक अनुभव हुआ। मुझे एक बुद्धिमान व्यक्ति ने पत्र लिखा और मैंने पद 5 के संदर्भ में उसे उत्तर दिया। उसने प्रतिउत्तर में मुझे एक और पत्र लिखा। मैंने ऐसा मूर्खता पत्र कभी भी नहीं पाया था। मैं सोचने लगा कि उसे उत्तर लिखकर मैं ही मूर्ख बना। मैंने उसके पत्र का उत्तर देना स्वीकार नहीं किया। मैं पद 4 का पालन कर रहा हूँ। अतः आप देखते हैं कि हमारे सामने मूर्ख से व्यवहार करने के दो मार्ग हैं। हमें निर्णय लेना है कि हम उसे उत्तर दें या ना दें। नीति वचन 26 के 6 पद में लिखा है, जो मूर्ख के हाथ से संदेश भेजता है वह मानो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारता और विष पीता है। यदि आपने किसी गलत मनुष्य के हाथ संदेश भेजा है तो आपने बहुत बड़ी भूल की है। नीति वचन 26 और उसके 7 में लिखा है, जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं वैसे ही मूर्खों के मुंह में नीति वचन होता है। मैं इसे प्रभु यीशु के दृष्टांतों के संबंध में उन शिक्षकों का स्मरण करता हूँ जो दृष्टांतों का गलत अर्थ निकालते हैं। मूर्खों के मुंह में नीति वचन होता है। नीति वचन 26 उसके 8 पद में आगे लिखा है, जैसे पत्थरों के ढेर में मड़ियों की थैली वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। मूर्ख को सम्मान देना ऐसा ही है जैसे उसे हथियार दिए हों। नीति वचन 26 के 9 पद में लिखा है, जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है वैसे ही मूर्खों का कहा हुआ नीति वचन भी दुखदायी होता है। शराबी के हाथ में कांटा रहेगा तो वह स्वयं को तो कांटा चुभाएगा, परंतु अन्यों को भी चुभाएगा। ऐसा ही मूर्ख है। यदि वह शिक्षक बन जाए वह स्वयं तो दुख उठाएगा, श्रोताओं को भी हानि पहुंचाएगा। नीति वचन 26 के 10 पद में आगे पढ़ते हैं, जैसा कोई तीरंदाज जो आकारण सबको मारता हो वैसा ही मूर्खों या राहगीरों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। अंतिम परिणाम तो निश्चित है, परमेश्वर सब कुछ संभाल लेगा। यह एक बहुत ही भयानक बात है। नीति वचन 26 के 11 में लिखा है, जैसा कुत्ता अपनी छांट को चाटता है वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। मेरे मित्रों इससे अधिक कठोर वचन मैं नहीं जानता। यह सोचने में ही अति घृणित है। ढोंगियों के संबंध में पत्रस इसी नीति वचन का संदर्भ देता है, दूसरा पत्रस की पत्री 2 अध्याय उसके 22 पद में। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लेटने के लिए फिर चली जाती है। स्मरण करें कि उड़ाव पुत्र जब सुअरों के साथ था तब उसे यह बोध हुआ कि वह गलत जगह में है और वह घर लौट आया। अब यदि वह अपने साथ एक सुअर ले आता तो क्या उस सुअर को उसका घर अच्छा लगता? जी नहीं, वह तो अपने ही बाड़े में जाना चाहता। कलिसिया के ढोंगियों का एक दिन पर्दाफाश हो जाएगा। इसमें दो राय नहीं है। अनेक जन अपने को परमेश्वर की संतान कहते हैं। मुझे किसी ने कहा कि वह कलिसिया की सदस्य नहीं चाहता क्योंकि वहां ढोंगियों की भरमार है। मैंने उससे कहा, मुझसे अधिक इस विषय में कौन जानता है, परंतु कलीसिया की सदस्यता ना लेने का यह एक उचित कारण नहीं है। आप ढोंगी की आड़ नहीं ले सकते। आपको वहां आकर सच्चाई प्रकट करना है। मेरे मित्रों, मैं ढोंग के विषय पहले भी चर्चा कर चुका हूं और मुझे पत्रों में इसके लिए मना भी किया जाता है। बाइबल विश्वासियों के लिए सुरक्षा और ढोंगियों के लिए असुरक्षा का उल्लेख करती है। यह नीति वचन ढोंगी के बारे में है। नीति वचन 26 उसके 12 पद में लिखा है, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। यहाँ मूर्ख से भी बढ़कर कोई है, वह मनुष्य जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है। नीति वचन 26 और उसके 20 पद में हम पढ़ते हैं, जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं वहाँ झगड़ा मिट जाता है। कुछ समूहों में कड़वाहट लगातार उठती रहती है क्योंकि वहाँ आग लगाने वाले होते हैं। यदि आग लगाने वाले ना हो तो आग बुझ जाएगी, झगड़े समाप्त हो जाएंगे। नीति वचन 26 के 21 में लिखा है, जैसा अंगारे में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। कुछ लोग कलीसिया में आते ही झगड़े आरंभ कर देते हैं। वे आज मसीही सेवा में भी हैं। वे सदा ही झगड़े की बातें करते हैं। वे परमेश्वर के वचन में रुचि नहीं रखते, जबकि ऐसा दिखावा अवश्य करते हैं। नीति वचन 26 और उसके 22 पद में लिखा है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। ध्यान दीजिए, मनुष्यों की मीठी मीठी कानाफूसी बड़ी अच्छी लगती है। उन्हें सुनना तो अच्छा लगता है, परंतु उन बातों को सहन करना कठिन है और अंत में वे परेशानी का कारण बन जाती है। परमेश्वर की संतान को बुरी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता। अब ढोंग के विरुद्ध यह सबसे बड़ा एवं कठोर वचन है, परमेश्वर के लोगों में झूठा दिखावा। नीति वचन 26 उसके 23 से 28 पद में हम पढ़ते हैं, जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बात की प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। जो गढ़ा खोदे वह उसी में गिरेगा और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो वह उससे बैर रखता है और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। कुछ लोग प्रभु यीशु में विश्वास का अंगीकार तो करते हैं, परंतु वे परमेश्वर की संतान नहीं हैं। हम उन्हें ढोंगी कहते हैं क्योंकि वे जो नहीं है उसका वे दिखावा करते हैं। वे झूठे हैं। उन्हें कलीसिया के भीतर और बाहर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नकल का सामना सच एवं मूल्यवान से होना चाहिए। एक पैसा या एक रुपए की नकल नहीं की जाती, बड़ी मुद्रा की नकल बनाई जाती है। ये नीति वचन झूठे का वर्णन करते हैं और उसके प्रति सचेत करते हैं। अतः हम झूठे विश्वासियों को देख आश्चर्य में नहीं पड़ना चाहिए। वह दोगला है, उसके मुंह में चिकनी चुपड़ी बातें हैं, परंतु उसका मन आपसे घृणा करता है। वह आपके बीच कुछ ढूंढ रहा है। किसी भक्त ने कहा, मनुष्य के लिए हानि पहुंचाने वाले से घृणा करना स्वाभाविक है। डॉक्टर आयरन साइट कहते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने का बोध होना परंतु उसे स्वीकार नहीं करने के द्वारा ढोंगी मनुष्य जिसको हानि पहुंचाता है उसके प्रति मन में घृणा रखता है। वह अपने इस दुर्भावना को छिपाने के लिए मीठी मीठी बात करता है, जबकि वह अपने शिकार के विनाश का सदैव षड्यंत्र रचता रहता है। मेरे मित्रों, बाइबल में चटुकारी और ढोंग का एक अति उत्तम उदाहरण है, हामान। उसने एक संपूर्ण जाति वरन रानी को भी नष्ट करने का षड्यंत्र रचा। वह राजा की चटुकारी चापलूसी करता था, परंतु स्पष्ट दिखाई देता था कि वह राजा को हटा देना चाहता है। मसीह क्षेत्र में भी बहुत झूठा दिखावा है, हमें इसे पहचानना आवश्यक है। इस पर पर्दा डालने की आवश्यकता नहीं है। संसार में कलीसिया से अधिक झूठ को ढांकना कहीं और नहीं देखा जा सकता है। हम ऐसा दिखाते हैं कि हमारे बीच कोई बुराई नहीं है। ऐसा करने से शायद बुराई अपने आप दूर हो जाएगी। यदि कोई हमसे कहे कि कलीसिया में झूठा दिखावा है, तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम हार गए। यदि हम अपने मन में उपस्थित घृणा को पहचान लें, तो हमें ऐसा लगता है कि हम हार गए। जी हाँ, विश्वासियों को ऐसे पाप का सामना करना होगा। नीति वचन हमें सामना करने की अच्छी सहायता प्रदान करता है। मेरे प्रियो, क्यों ना आज हम अपने जीवन में एक भले विचार को आने दें और किसी भी प्रकार का ढोंगपूर्ण जीवन न जिएं। परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मैं मूर्खतापूर्ण और ढोंगीपूर्ण जीवन नहीं जीना चाहता हूँ, नहीं जीना चाहती हूँ, आप मेरी मदद कीजिए। और निश्चय ही आप एक अच्छा जीवन प्रभु में जी सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु इस अध्ययन के द्वारा आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। जहाँ